دن سے. تو پوچھا حضرت یہ تصوف کیا چیز ہے؟ اپنے دل میں سوچ کر آئے تھے کہ حضرت جو تعریف کریں گے اس تعریف کے اوپر میں اشکال کر دوں گا, پھر حضرت اس کا جواب دیں گے, پھر میں اشکال کروں گا. حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہ پوچھنے آیا ہوں تصوف کیا ہے, اب میں جا رہا ہوں دہلی کام سے, واپس جب آؤں گا تو آپ سے جواب لوں گا. حضرت نے فرمایا بھائی اتنی بھی جلدی کیا ہے, بیٹھو بھی ابھی جواب دے دیتا ہوں. فرمایا دو حدیثیں, دو حدیثوں کے اندر پورا تصوف موجود ہے. دو حدیثوں میں فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے. تصوف کی ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, کے اپنی نیتوں کو درست کر لے انسان, اپنی نیت کیا بنا لے, یریدون وجہ, کہ میرا ارادہ صرف اللہ پاک کو حاصل کرنے کا ہے. اگر اس نیت سے خانقاہ کے اندر آتا ہے تو ضرور بالضرور اس کو فائدہ ہوگا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات 100 دفعہ بیان ہوتی ہے, ہر جمعے میں بیان ہوتی ہے, تو اس چیز کا طالب کوئی نہ کوئی اس مجلس میں موجود ہوتا ہے جس کے لیے وہ نافع ہوتی ہے. جیسی انسان تڑپ لے کر کے آتا ہے ویسا انسان لے کر کے جاتا ہے. ماں بھی بغیر روئے بچے کو دودھ نہیں دیتی. جب دودھ ہوتا ہے, لیکن ماں جب تک نہیں دیتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے, کیونکہ بچہ جب روئے گا تب ماں کو احساس ہوگا کہ اس کو تڑپ ہے. تو اللہ والے ہم سے پیار تو کرتے ہیں, لیکن حلاوت ایمانی کب دیتے ہیں؟ جب ہم تھوڑا سے تھوڑی سی احتیاط کریں کہ حضرت ہمیں بھی اللہ کا نام لینا سکھلا دیجیے, کیونکہ نام لینا بھی سیکھنا پڑتا ہے اللہ والوں سے. اللہ کا نام بغیر لیے اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے لینا شروع کر دے, حضرت کمل امت حضرت تھانوی بادام جیسے کوئی انسان کھائے, کتنی طاقتور چیز ہے. اور سردی کا موسم تو بادام کتنی طاقتور چیز ہے, لیکن زیادہ کھا لے تو کیا حال ہوگا؟ سردی کے اندر کرتا اتار کا ٹہل رہا ہوگا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص نے 10,000-12,000 دفعہ اللہ اللہ کر لیا. حضرت نے منع کیا تھا, اب کیا کیا اس نے, کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی, نیند نہیں آئی, دماغ خشک ہو گیا. زیادہ نے فرمایا کہ دیکھو معالج ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے, بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دوا لوگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انفیکشن ہو جائے, بجائے بیماری شفا کے بیماری اور بڑھ جائے. تو اللہ والوں کا سایہ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے, مقصود اللہ والوں کی ذات نہیں ہوتی, مقصود حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ والے تو ہاتھ پکڑ کر صرف ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اللہ والے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ آیا تھا گناہگار, اس کو میں نے پاک صاف کر کے تجھ تک پہنچا دیا. دادا نے فرمایا سوچو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس پر جو اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ کر جو گندگی کے اندر پڑے, حرام میں مبتلا ہے, جن کو شرک اور بدعت اور شریعت کا فرق نہیں پتا ہے, ان کو ڈھونڈ کر نکال کر اللہ تک پہنچاتے ہیں. فرمایا ایک ماں کا بچہ گم ہو جائے اور کوئی شخص اس کو ڈھونڈ کر کے لے کر کے آئے, کوئی شخص گیا ڈھونڈ کر کے لایا کہ بھائی یہ لیجیے آپ کا بچہ غائب تھا اتنے دن سے, میں ڈھونڈ کر کے لے آیا. دادا نے فرمایا کہ باپ پہلے کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ لانے والے کا. کیوں؟ وہ ذریعہ بنا لانے کا. تو فرمایا جو بندے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ڈھونڈ کر اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں, فرمایا پہلا پیار اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں, پہلا پیار ان کو ملتا ہے, پھر اس کے بعد جو پہنچا ہے, پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو چلا دیتے ہیں. تو فرمایا بیدہ الملک, تمام جہانوں کی بادشاہت حقالہ کے ہاتھ میں. بڑے بڑے بادشاہ, بڑی بڑی سلطنتیں, بڑے بڑے طاغوت, انہوں نے سر اٹھایا, سرکشی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. ڈھیل دیتے 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 پھر جب اللہ تعالیٰ نے ڈھیل کھینچی تب ان کو یقین آیا کہ ہم سے بڑی بھی کوئی ذات ہے. ورنہ فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا, انا ربکم الاعلا, میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف بدعا کی, دعا قبول ہو گئی, لیکن دعا کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا. آج تو ہم 40 منٹ صبر نہیں کرتے, ہم دعا کرنے کے بعد 40 منٹ صبر نہیں کرتے, اور 40 دن گزر جائے تو کہتے ہیں مولانا وظیفہ ہی کام نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, جو وظیفہ بتایا تھا وہ کام ہی نہیں کر رہا. نہیں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے, اور ہر چیز اللہ کی جس وقت پر لکھی ہے اسی وقت پہ ہوگی. ایک انسان بارش مانگتا ہے اللہ سے, یا اللہ, ایک بزرگ بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کی زبان سے اچانک بے ساختہ نکل گیا کہ اللہ کیا خوب موقع پر بارش فرمائیے, تو آسمان سے آواز آئی کیا کبھی میں بے موقع بھی بارش کرتا ہوں. تو کبھی انسان کسی چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما دے, لیکن وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اب سردی کا زمانہ ہے, اگر بچہ جو ہے, آج کل بیماریاں عام ہیں اس وقت, تو چھوٹے بچے جو ہے کیا ہے, کھٹی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں. اب ماں باپ کیا ہے, ان کو روکتے ہیں. اب بچہ یہ سوچے کہ ماں باپ تو ہماری سنتے ہی نہیں, ان کو تو ان سے محبت ہی نہیں ہے, تو عقل مند انسان کیا سمجھائے گا. یہ تقاضا, روکنا تقاضا محبت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بچہ کیا ہے, بچہ تو بچہ ہی ہے. تو ہم اللہ کے سامنے بندے ہی ہے, اللہ اللہ ہے, ہمیں پل کی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کی خبر ہے, اس کے بعد تک کی خبر ہے کہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہماری دعا اگر قبول تو ہو گئی, لیکن ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے, تو اس ظہور کے دیر میں انسان جو مایوس ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دادا نے فرمایا کہ ایک باپ بچے کو سمجھاتا ہے, پیار سے سمجھاتا ہے, لیکن بعض دفعہ سمجھانے کے لیے ڈنڈا استعمال کرتا ہے. فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا استعمال کیا ہے کہ دیکھو میری رحمت سے مایوس ہو گئے, جہنم میں ڈال دوں گا تمہیں. فرمایا جہنم کا ڈنڈا دکھلایا کہ رحمت سے مایوس مت ہو, لگے رہو, کھولے وہ یا نہ کھولے در. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اللہ تعالیٰ کا کام ہے کھولنا, انسان کا کام کیا ہے, اللہ اللہ کرنا. اور جس سے محبت کرنی ہو, جس سے محبت کرنی ہو اس کا نام لینا شروع کر دے, جس سے محبت کرنی ہو اس کا نام لینا شروع کر دے. ایک کسی بزرگ سے معلوم کر کے, کسی اللہ کے ولی سے معلوم کر کے کہ میں اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں, اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں, پھر وہ اللہ کا نام بتا دے گا. جب نام بتا دے گا تو نام لیتے وقت, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبحوں سے ہی انتظار شام ہے. جن کو اللہ کے نام کے اندر, حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بڑے میاں تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم الامت سے کہ میاں اشرف علی, جب میں اللہ کا نام لے ہوں, فرمایا حضرت حکیم الامت نے کہ حسی لذت تو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے, لیکن حقیقی لذت بھی بعضوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو وہ بڑے میاں نے فرمایا کہ اشرف میاں اشرف علی, جب اللہ کا نام لے ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے, یعنی دل میٹھا نہیں ہوتا, فرمایا زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے. اللہ والوں کی باتوں میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ بیٹا گناہ چھوڑ دو, اور دوسرا انسان 10 دفعہ کہے تو اتنا اثر نہیں ہوتا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے لیتے اب ان کی زبان میں تاثیر آ گئی. لیکن روکنا نہ چھوڑے, اگر کسی کو برائی میں دیکھ رہا ہے تو روکنا نہ چھوڑے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے. جب تک امت یہ کام کرتی رہے گی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے, تو اللہ کا عذاب تم پر سے رکا رہے گا, اور جب تم اس چیز کو چھوڑ دو گے, اس کام کو چھوڑ دو گے, تو اللہ کا عذاب تم پر اس طرح آئے گا جیسے تسبیح کو توڑ دیا جائے, اس کے دانے زمین پر آتے ہیں, اس طریقے سے اللہ کا عذاب آئے گا. آج انسان برائی دیکھتا ہے, لیکن برائی دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے, میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. एक बुजुर्ग दादा ने फरमाया कि एक बुजुर्ग तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते से देखा एक शख्स बदनजरी कर रहा है, खुद नहीं की, देखा एक शख्स बदनजरी कर रहा है। फरमाया जब वापस आए चादर ओढ़ कर लेट गए, बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी की नहीं दोस्तों, करना तो दूर की बात थी औलिया के नजदीक, सिर्फ देख लेने पर यह हालत थी कि फरमाया आकर के चादर ओढ़ करके लेट गए और जब उठकर पेशाब किया तो पेशाब में खून आ गया। यह अल्लाह वालों का हाल। और हमारा हाल क्या है, हमारा ईमान क्या है? हम देखते हैं कहते हैं अरे वो कर रहा है, हमें क्या जरूरत है? नहीं, बुराई का दर्जा क्या है? मन रहा मिनकुम मुनकरन, जब तुमने से कोई शख्स कोई बुराई देखे, फबिलिसानी मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदी, पहला हक क्या है? उसको हाथ से रोके। हाँ, अगर मातहत है, औलाद है, बीवी है तो हाथ से रोके। فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, अगर इसकी इस्तेआत नहीं रखता, فَبِلِسَانِ, तो जबान से कहे, और इसके भी इस्तेआत नहीं रखता, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, इसके भी इस्तेआत नहीं है, तो فَبِقَلْبِ, क्या करे, अपने दिल के अंदर बुरा समझे। और وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया तुम्हारे ईमान की सबसे कमजोर तरीन दर्जा है कि तुम दिल के अंदर बुरा समझो। आज कमजोर तरीन दर्जा भी हमारे दिल से निकल गया, हम बुराई देखने के बाद उसको फिर भी ये नहीं समझते कि बुराई हो रही है, ये सोचते हैं क्या हुस्न खूबी से इसने ये काम अंजाम दिया है। आज धोखा दही को हुस्न खूबी समझा जाने लगा। जो कौम धोखा देने लगे, झूठ बोलने लगे, जिस कौम में जिना आम हो जाए, शराब आम हो जाए, जालिम जुल्म करते वक्त ये न सोचे कि मैं जुल्म कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हाकिम वक्त ही जुल्म कर रहा है, हर ताकतवर अपने नीचे वाले पर जुल्म कर रहा है। जब जहाँ जुल्म आम हो जाए, जिना आम हो जाए, शराब आम हो जाए, सूद आम हो जाए, फिर वो कौम ये कहे कि अल्लाह हमारी दुआएं तो कबूल क्यों नहीं करता, कहाँ से दुआएं कबूल होंगी? क्या ये बीमारियां हमारी कौम के अंदर नहीं है? इस वक्त अहले पाकिस्तान के अंदर ये बीमारियां आम नहीं है? जब आम है तो हमारी दुआएं कहां से कबूल होंगी? एक लुकमा हराम खिलाया था हज्जाज ने, एक लुकमा हराम। हज्जाज बिन यूसुफ ने जुल्म शुरू किया तो उसको उलमा ने कहा कि डर अल्लाह से, ये जो लोग तुझे बद्दुआएं दे रहे हैं, कहीं इनकी बद्दुआ कबूल हो गई तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये जितने बड़े बड़े बैठे हैं बद्दुआ करने के लिए, जैसे ही मैं आया था मैंने इनकी दावत करके इनको दावत के अंदर एक लुकमा हराम खिला दिया था, ये सारी जिंदगी बद्दुआ करें मुझे कोई परवाह नहीं, ये एक लुकमा हराम था, एक लुकमा हराम। आज तो दिन में कितने लुकमा हराम जा रहे हैं, उसके बावजूद हमें फिक्र नहीं है। हम सोचते हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहे, हमारी दुआ का जोर क्यों नहीं हो रहा, हमारे दिल के अंदर ईमान की हलावत क्यों नहीं आ रही, दीन की तरफ रग़बत क्यों नहीं बढ़ रही। हम गुनाह छोड़ेंगे तब दीन की तरफ आएंगे, गुनाह छोड़ते ही नहीं। घर में शरई पर्दा नहीं है, घर में टीवी रखा हुआ है, टीवी देखने से बाज नहीं आते, ना महरमों से बात करने से बाज नहीं आते, बदनजरी से बाज नहीं आते। जब गुनाह नहीं छोड़ेगा तो दीन की लज्जत कहाँ से हासिल होगी? एक इंसान नीम खाए और नीम खाने के बाद गुलाब जामुन खाए, गुलाब जामुन का मजा आएगा कहाँ से? आएगा गुलाब जामुन का मजा? गुलाब जामुन खाने का मजा कब है कि पहले अपने मुंह को ब्रश से साफ करे, साफ करने के बाद थोड़ी सी चीनी भी खाएगा तो उसको गुलाब जामुन से ज्यादा लज्जत देगी। तो दोस्तों थोड़ा सा दीन भी काम आ जाएगा अगर हम गुनाह छोड़ करके करें। आज मुश्किल ये कि हम चाहते हैं कि हम गुनाह भी करें, कहते हैं मौलाना अगर टीवी नहीं देखेंगे तो हालात से बाखबर कैसे रहेंगे, और हालात नहीं हमें, अरे हालात हमारे हाथ में थोड़ी है। क्या वो आपने, अगर आपने और मैंने ये देख लिया टीवी के अंदर कि फला जगह फायरिंग हो रही है, क्या हम वो फायरिंग रोक देंगे? या हालात खराब है तो रोक देंगे? جن کے گھر میں نہیں ہے میں واللہ کہتا ہوں وہ سکون و آرام سے رہتے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ٹی وی لگایا, کس لیے؟ خبریں دیکھ رہے ہیں. اب کیا باہر نکلے, کراچی میں فلاں جگہ علاقے میں فائرنگ. اب باہر نکلے, نکلتے وہ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں بھی نہ ہو جائے, اور جس کو علم نہیں ہے وہ جاتا بھی آتا بھی ہے, اور موت کا جو وقت لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو کیوں اپنے انسان اپنے آپ کو کیوں ذہنی, آج ہر انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے, ہر انسان ذہنی تناؤ کے اندر مبتلا ہے کہ یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا, اب وہی ہوگا جو اللہ منظور خدا ہوگا. تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. بھائی اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ جو بادشاہوں کی بادشاہت چلا رہا ہے, جو اس عالم کو چلا رہا ہے, اس کی منشا کے خلاف ایک پتہ نہیں ہل سکتا. تو ہماری منشا اور اس کی منشا میں اگر مقابلہ ہو تو حق تعالیٰ کی منشا ہی غالب ہوگی. غالب تو حق تعالیٰ کی منشا ہوگی. پھر انسان بیٹھ کر اپنا دماغ لڑا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا. آج کل عجیب عجیب بیماریاں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایسا ہو نہیں جاتا. اگر ایسا کرانا ہے تو دعا کر لو. کوئی ایسا امر آ گیا, کوئی مشکل آ گئی, اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرو کہ یا اللہ اس کام کو اس طریقے سے کر دیجئے. ہمارے سوچنے سے نہیں ہوگا, ہمارے دعا مانگنے سے ہوگا. آج دعا کو چھوڑ دیا, سوچنا زیادہ شروع کر دیا. ایک دفعہ ایسے ہی ایک معاملہ پیش آیا کچھ والد صاحب کا, تو اس وقت یہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی, تو بلاک نمبر ایک کے اندر مسجد قباء وہاں جمعے کے لیے گئے تھے. تو کچھ معاملہ پیش آیا تو دادا واپس آئے, تو میں نے دیکھا دادا کو کہ معاملہ جو تھا کچھ خراب ہونے لگا. تو فوراً دادا نے فرمایا کہ میرا مسلح لے کر آؤ. فوراً فرمایا میرا مسلح لے کر آؤ, اور مسلح بچھایا اور دو رکعت پڑی اور سجدے کے اندر رونا شروع کر دیا کہ اللہ اس معاملے کو صحیح کر دے. اگر ہم ہوتے تو اسباب کے درجے کے اندر کیا کرتے, کہہ رہے بھاگو پکڑو اس کو دیکھو اس کو دیکھو. نہیں, اللہ والوں نے کر کے دکھلایا کہ ڈائریکٹ لائن ملاؤ اللہ سے, اللہ تعالیٰ خود سب سیدھا کر دیں گے. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود صحیح کر دیں, ہم خود صحیح نہیں کر سکتے, ہم اللہ سے رابطہ کر کے صحیح کروا سکتے ہیں. تو دوستو ہم اللہ سے کیوں نہ صحیح کرائیں؟ اس سے کیا ہوگا, تعلق مضبوط ہوگا. جس سے انسان بار بار رابطہ کرتا ہے, ایک ہی دوست ہے آپ کا, اللہ نے اس کو کوئی عہدہ دے دیا, پولیس کے اندر چلا گیا یا کسی اور محکمے میں چلا گیا, آپ دن میں پانچ دفعہ اس سے رابطہ کرتے ہیں یا چار دفعہ اس سے رابطہ کرتے ہیں, محبت بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ پہلے آپ جناب ہوتا ہے, پھر دوست یار ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے جاتے ہیں. تو دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کوئی مشکل آئے اللہ کی طرف رجوع کرے. جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا, جتنا زیادہ رجوع بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ محبت اور تعلق بڑھتا جائے گا, اور جتنا زیادہ تعلق بڑھتا جائے گا تو جتنی دوستی پرانی ہوتی جاتی ہے, دوست ایک فون کر کے کہتا ہے یار ذرا کچھ مشکل ہے گھر آ جانا, وہ سارے کام چھوڑ کر گھر پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہتا ہے یار میرا بہت پرانا دوست ہے. تو دوستو اللہ والے کیا کرتے ہیں, اللہ سے تعلق بناتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے. جب تعلق قائم ہو گیا تو ذرا سی پریشانی آئی ان کا صرف ایک آنسو گر جانا. کیوں بڑھاپے کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ والے, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے ہمارے لیے, وہ خالی ہاتھ اٹھا کر کے, خالی زبان بھی نہیں ہلتی, خالی ہاتھ اٹھتا ہے انسان کا کام بن جاتا ہے. ہاتھ اٹھتا ہے انسان کا کام بن جاتا ہے. اللہ والوں کی دعا کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی, اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی, اللہ تعالیٰ اتنی تو لاج رکھتا ہے. ہم اپنے بچے کو محروم نہیں کرتے. دادا نے اس کی مثال کیا بیان فرمائی, فرمایا کہ ایک بچہ باپ بلاتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا ادھر آؤ. بچہ آ گیا, جی ابا. بیٹا یہ لو لڈو کھا لو, یہ کافی, یہ مٹھائی تمہارے لیے. अब लड्डू का जमाना गया, बच्चा कहाँ लड्डू खाता है, अब तो चॉकलेट का जमाना है। तो उसी हिसाब से समझाता हूँ, ये लो बेटा चॉकलेट ले लो, तो बच्चा क्या करता है, पीछे से एक हाथ पकड़ता है, कहता है अब्बा ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। अब बात समझ जाता है कि इसका तकाजा क्या है, कि मतलब मुझे दिया या इसको भी दीजिए। तो फरमाया कि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखता है तो अल्लाह ताला के सामने जब वो हाथ फैलाते हैं, अल्लाह ताला उनको आता फरमाते हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह मेरे साथ कुछ और भी है, इनको भी महरूम न फरमा, इनको भी महरूम न फरमा। फरमाया वहाँ बाप महरूम नहीं करता, किसकी वजह से, कि मेरे बेटे का दोस्त है, और यहाँ अल्लाह ताला महरूम नहीं करता कि मेरे वली के दोस्त है, मेरे दोस्त के खादिम है, मेरे दोस्त से मोहब्बत करने वाले हैं, क्यों महरूम करूँ, चलो इनको भी नवाज दो। तो दोस्तों अल्लाह की अल्लाह वाली मोहब्बत ये दुनिया की वाहिद मोहब्बत है जिसके अंदर न माल देखा जाता है, न दौलत देखी जाती है, न पैसा देखा जाता है, न रंग देखा जाता है, न नस्ल देखी जाती है, न मुल्क देखा जाता है। इसी मजलिस के अंदर अल्लाह ताला ने कितने जगहों के लोगों को जमा किया, कोई काला कोई गोरा, सब दीन की नस्बत से जमा हुए। और हदीस पाक के अंदर क्या आता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या ऐलान फरमाएंगे, अल मुतहाबीन फिया, कहाँ है वो लोग जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत रखते थे। आज जबानों के लिए मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, रंग की वजह से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, जबान की वजह से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, लिसानियत की वजह से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, कौम और वतन की वजह से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर मोहब्बत करने वाले लोग कम हैं। और जो अल्लाह के नाम पर मोहब्बत करते हैं, इस दुनिया में भी वो कामयाब और आखिरत में भी वो कामयाब होते हैं। हजरत बिलाल हबशी क्या थे, हबशा के काले थे, खूबसूरत नहीं थे, मालो दौलत नहीं था, काले थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब से एक दिन निकल गया कि बिलाल तुम काले हो। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि मैंने बिलाल को क्या कह दिया। दोस्तों ये दीन की बरकत है, ये दीन सिखलाता है कि बिलाल हबशी को अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश मक्का में से, लेकिन जबान से निकल गया कि ए बिलाल तुम काले हो, उसी वक्त लेट गए। फरमाया कि ए बिलाल अपने पांव से मेरे सीने को रोंदो, मेरी जबान से काला निकला कैसे। फिर उसके बाद क्या फरमाते थे, या सैयदी बिलाल, ए मेरे सरदार बिलाल। ये क्या है, अल्लाह के लिए मोहब्बत। जब अल्लाह के लिए मोहब्बत थी तो फिर क्या था, मुसलमान तमाम कौमों का सरदार था, कलील था लेकिन तमाम कौमों का सरदार था। आज उम्मत क्या हुआ, बिखर गई। आज जब बिखर गई तो तादाद अरबों के अंदर है, और जब अरबों के अंदर है फिर भी मुसलमान गुलाम है। क़यामत के दिन क्या ऐलान होगा, अइनल मुतहाब्बीन फिया, कहाँ है मुझसे मोहब्बत करने वाले। आज के साए के अंदर आ जाए, हदीस पाक के अंदर आता है जिस दिन कोई साया ना होगा उस दिन अल्लाह ताला ये निदा लगाएंगे, ये पुकार होगी कि पुकारो मेरे उन बंदों को जो आपस में मोहब्बत रखते थे, किसकी वजह से, अल्लाह की वजह से। ना वो ये देखते थे कि इसका ताल्लुक किस कौम से, ना ये देखते थे कि किस कबीले से, ना ये देखते थे किस जात से, वो ये जानते थे कि अल्लाह का बंदा है, मुझे अल्लाह के लिए इससे मोहब्बत करनी है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, खाली ये नहीं है कि बादशाहत मेरे हाथ में, फरमाया वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज के ऊपर कादिर भी है। जो फैसला करना चाहे अल्लाह ताला, उस फैसले को कोई टाल नहीं सकता, दुनिया की सारी दुनिया के इंसान मिलकर के उस फैसले को नहीं टाल सकते। जिस चीज का इरादा अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्नमा अल्लाह ताला के लिए इरादा क्या चीज है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन, जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा फरमाते हैं तो इरादा क्या होता है। हम तो पहले इरादा करते हैं, इरादा करने के बाद सोचते हैं कि एक मकान बनाना, इरादा कर लिया, अब बनाना तो है, बनाने के से पहले रकम की जरूरत है, जब रकम आ गई तो प्लाट की जरूरत है, अब प्लाट मिल गया तो ठेकेदार की जरूरत है, ठेकेदार मिल गया तो सामान जमा करने की जरूरत है। हमारे इरादे में और अल्लाह के इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह का इरादा क्या है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैया, जब अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं तो क्या कहते हैं? अन यकूल लहू कुन, फरमाते कुन हो जा, फयकून बस वो हो जाता है। और दादा ने फरमाया कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फयकून जो है अल्लाह ताला का, ये इंसानों को समझाने के लिए, वरना अल्लाह ताला कुन के भी मोहताज नहीं है। ये कुन हमें समझाने के लिए कि हो जा, बस हो जाता है, वरना इंसान अल्लाह ताला इरादा करते हैं काम बन जाता है। इसको अमीर करना है, उसको गरीब करना है, उसको फकीर बनाना है, उसको किस तरह पैदा करना है, उसको किस तरह पैदा करना है, उसको कब मौत देनी है, अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं काम बन जाता है। इंसान मोहताज है, इसलिए फरमाए वहु आला कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज के ऊपर कादिर है। चाहे अल्लाह ताला तो मुर्दे को जिंदा कर दे, चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर दे, चाहे तो ईसा इब्ने मरियम को ये मौजदा अता कर दे कि मुर्दों को जिंदा कर ले, चाहे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये मकाम अता फरमा दे कि जानवरों की बोली भी सुलेमान अलैहिस्सलाम समझने लगे, चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल कर कह दे कुलना या ना वो कूनी बर्दा व सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के ऊपर जब आग जलाई गई, इश्क देखे, जब आग जलाई गई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को नहीं भेजा कि जिब्राइल जाओ इसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल करके आ जाओ, इन लोगों ने आग जलाई है मेरे खलील को इस आग में डालने के लिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अगर मैं पानी से बुझवा दूंगा तो दुनिया में मेरी मेरे नबी की, मेरे प्यारे की नबूवत को की नबूवत की आग के ऊपर आग आ जाएगी, डालने तो आग के अंदर, आग में डालकर फिर बचाऊंगा, वरना बुझाने पर तो हक ताला कादिर था, कादिर नहीं थे। आग को हवा को हुक्म देते हवा तेज चल, आग बुझ जाती, लेकिन फरमाया तुम डालो। जब डाला उन्होंने तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुलना या नारु कूनी बर्दन, ए आग मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। सलामती किस लिए फरमाया? दादा ने फरमाया कि ऐसा ना होता कि आग ज्यादा ठंडी हो गई या बर्फ की सिल बन गई, तो बर्फ की सिल के ऊपर भी तो ठंड लगती है, तो इसलिए क्या फरमाया? वो बर्दन, वो सलाम, वो सलामन, कि फरमाया इतनी ठंडी भी मत होना कि मेरे इब्राहिम को नुकसान पहुंचे, वो सलामन सलामती वाली रहना, क्योंकि गर्मी से भी नुकसान न पहुंचे और ठंडक से भी नुकसान न पहुंचा। तो ये और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस देखिए कि अल्लाह ये देखा कि अल्लाह ने आग नहीं बुझाई, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आग में कूदूंगा तो जल जाऊंगा, उन्होंने कहा डालना चाहते हो, या अल्लाह तू ही मेरे लिए काफी है, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, कूद गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा आज तो हमारा इश्क ऐसा है कि बस इश्क के ऊपर जो है हंसी आती है, कि हम अल्लाह ताला से इश्क मोहब्बत का दावा भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा महबूद है, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा अमर पेश आ जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं पता नहीं अल्लाह ताला बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, ऐसा ना अल्लाह ताला बचाए ना, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला गाफिल है हमसे, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला हमसे गाफिल है। हर इंसान उससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, हर इंसान से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं, इंसान तो इंसान अल्लाह ताला जानवरों से भी मोहब्बत फरमाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये फितरी चीज है कि जो चीज जिस चीज को बनाता है उससे मोहब्बत करता है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा मैं पैदा कैसे हुआ, तो माँ उसको क्या बताती कि तू कैसे पैदा हुआ, तो माँ ने कहा बेटा मैंने एक हंडिया ली, एक हंडिया के अंदर मिट्टी डाली और मिट्टी डाल के जमीन में दबा दिया, कुछ दिनों के बाद खोला तो देखा तू था उसके अंदर, तो मैंने निकाल लिया, तो बच्चा था, उसने भी एक हंडिया ली, उसके अंदर मिट्टी डाली और उसको ढक करके जमीन में दफन कर दिया, जब कुछ दिनों के बाद खोला तो उसके अंदर एक मेंढक था। घुस गया होगा कहीं से मेंढक। तो बच्चे ने कहा दिल तो चाहता है तुझे मार दूं, दिल तो मेरा ये चाहता है कि तुझे मार दूं, लेकिन क्या करूं तू मेरी औलाद है। अपना अपना दिमाग है। माँ ने तो उसको किसी वजह से नहीं समझाया कि तू दुनिया में कैसे आया, तो वो समझा कि शायद इसी तरह आते हैं। तो उसने क्या मेंढक को अपनी औलाद समझ लिया। तो जितना दिमाग था उसका, उसने उसके मुताबिक फैसला किया। तो जो इंसान जिस चीज को बनाता है उससे मोहब्बत करता है। अगर औलाद है, औलाद है, उसको क्या है कांटा चुभ जाए तो माँ बाप सड़क जाते हैं। क्यों? माँ बाप ने बनाया नहीं है, खालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ने जरिया बनाया पैदा करने का, वरना माँ बाप खालिक है। बोलो भाई, खालिक है, मालिक है, मालिक हक ताला जल्ल शानू है, खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन फिर भी माँ बाप को ऐसी मोहब्बत दी। माँ बाप तो माँ बाप, अल्लाह ताला भाई बहन में ऐसी मोहब्बत रखते हैं। मैंने एक दिन अपने सबसे छोटे बेटे को मैंने एक दिन मारा, मैं निकलो कमरे से, तो वो अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ कर कहता है चलो इसके कमरे से बाहर निकले। तो मैं कहा या अल्लाह, तूने मोहब्बत की क्या चीज पैदा की है कि बच्चों को भी समझ है कि बाप ने मुझे मारा तो तू क्यों रहे इसके पास, चल तू भी चल यहाँ से। तो मोहब्बत ऐसी चीज है जो इंसान को फौरन समझ में आ जाती है, और ये इतनी प्यारी चीज है दोस्तों कि अगर इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो दीन के सारे उमूर आसान है। न नमाज पढ़ना मुश्किल है, न रोजा रखना मुश्किल है, न हज करना मुश्किल है, न ज़कात अदा करना मुश्किल है, न अल्लाह के रास्ते में जान देना मुश्किल है। ये मोहब्बत ऐसी चीज है, बस मोहब्बत आ जाए अल्लाह ताला की, ये मोहब्बत अजीब चीज है। ये मोहब्बत अजीब चीज है, ये जब दिल के अंदर आ जाती है, ये अगर दुनियावी मोहब्बत दिल के अंदर आ जाए तो इंसान पागल हो जाता है। किसी लड़की के ऊपर दिल आ गया, अब क्या है, रातों की नींद हराम, दिन का सुकून हराम, अब क्या है, उसको हर वक्त वो चेहरा सामने। तो हक ताला जल्ल शानू जिसके दिल में आते हैं, और जब अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल के अंदर आती है तो हर वक्त हक ताला जल्ल शानू के जलवा सामने होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत सामने होती है, और फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता, कोई काम मुश्किल नहीं होता इंसान के लिए, हर काम अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देते हैं। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तुम मुझसे डर करके रहो, मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल के अंदर आसानी पैदा कर दूंगा। जिस मुश्किल के अंदर होगे हर मुश्किल से तुम्हें निकाल लूंगा, ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान करीम के अंदर, ये किसी अल्लाह कोई हदीस नहीं सुना रहा, ये अल्लाह ताला का वादा है अपने कलाम पाक के अंदर कि वमन यत्तकी अल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डर करके रहता है अल्लाह ताला हर मुश्किल के अंदर से उसको निकाल लेते हैं। आगे फरमाया वमन यत्तकी अल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डर करके रहता है अल्लाह ताला उसका हर काम आसान फरमा देते हैं। फरमाया सिर्फ शर्त क्या है, तक्वा, तुम मुत्तकी बन करके रहो, मुझसे डरते रहो। जब तक बच्चा बाप से डरता रहता है तो बाप क्या करता है, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके सोने का, उसके लेटने का, यहाँ तक के बाप कितनी फिक्र करती है कि जब बच्चा सो जाता है तो अगर उठ करके देखती है सर्दी के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ने लात मार करके रजाई हो जो है दूर कर दी हो, अगर दूर कर दी तो फिर माँ उठकर आती है, फिर उसको उड़ाती है, फिर बच्चा दूर कर देता है, फिर उड़ा देती है। तो दोस्तों ये एक माँ की मोहब्बत है। अल्लाह ताला हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की तरफ से सवाल करते हैं, मादरे रा महरे मना मुख्तम, ए दुनिया वालों तुम माओ की मोहब्बत पर नाज करते हो, इन माओ को मोहब्बत करना मैंने सिखलाया है, क्यूँ बुआ चमे के मन अफरोख्तम, जिस दिन मेरी मोहब्बत का सूरज शुरू होगा उस दिन देखना क्या मामला होता है। आज शैतान लोगों को मायूस करता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ दीन की तरफ जा रहे हो, अरे दाढ़ी वाले दाढ़ी रख लोगे तो तुम क्या मुल्ला बन जाओगे। अरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते के अंदर आ जाओ, हक तआला जल्ले शानू के करीब हो जाओ। जितने करीब होगे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। जिस हालत में उसी हालत में अल्लाह वालों के पास आना जाना शुरू कर दे। दाढ़ी है नहीं है कोई बात नहीं, गुनाह कर रहा है कोई बात नहीं, नहीं छूट रहा है कोई बात नहीं, अल्लाह वालों के पास आता जाता रहे। एक साहब ने हजरत हकीमुल उम्मत को लिखा कि हजरत आपके पास आज आ जा रहा हूँ, ताल्लुक कायम कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला इस्तकामत आता नहीं फरमा रहे, इस्तकामत नहीं है, कामिल नहीं हुआ। तो हजरत ने फरमाया नहीं, लिखा कि हजरत मुझे डर है, खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन में कामिलीन में ना उठाया जाऊं, कामिलीन में मेरा शुमार ना हो। तो हजरत हकीमुल उम्मत ने क्या जवाब दिया, फरमाया कामिलीन में ना सही तो ताइबीन में जरूर उठाए जाओगे, कामिलीन में ना सही तो ताइबीन में जरूर उठाए जाओगे। और ताइब कौन है, अत्ताइब हबीबुल्लाह, जो तौबा करता है वो अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते, फरमाते मैं माफ नहीं करता, खाली ये नहीं कहता जा माफ कर दिया। दुनिया के अंदर अगर इंसान किसी से बदतमीजी कर ले फिर उसके बाद माफी मांग ले तो वो क्या कहता है, जा माफ कर दिया लेकिन आज के बाद मेरे सामने नहीं आना। लेकिन हक ताला जल्ले शानू से माफी मांगता है कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। लेटा हुआ है, दादा ने फरमाया लेटे रहो, आँख खुल गई रात को, सोया हुआ है सोते में आँख खुल गई, फरमाया लेटे लेटे हाथ उठाओ को या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। आलम है कि बेलाज पड़ा सोता है, आलम है कि बेलाज पड़ा सोता है। दूसरा मिसाल क्या है, इस रात के सन्नाटे में कोई याद करके तुझे रोता है। आलम है कि बेलाज पड़ा सोता है, इस रात के सन्नाटे में कोई तुझे याद करके रोता है। फरमाया तुम सिर्फ हाथ उठाओ कि अल्लाह सारा आलम सो रहा है, इससे सिर्फ मैं और तू वाकिफ है, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। फरमाया करवट बदलो फिर सो जा, फरमाया उसका असर देखना, तुमसा कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है। उस वक्त ये शेर याद आएगा, तुमसा कोई हमदम कोई दमसाज नहीं है, बातें तो है हरदम मगर आवाज नहीं है। बीवी भी बराबर में सो रही है उसको भी खबर नहीं, बच्चे भी सो रहे हैं उनको भी खबर नहीं, हम तुम ही आगाह हैं बस इस रब से खफी से। सारा जहान समझ रहा है कि ये तो सो रहा है लेकिन ये अल्लाह के साथ मशगूल है, हम तुम ही आगाह हैं बस इस रब से खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है। दुनिया की मोहब्बत करता है इंसान, छुपाना चाहता है फिर भी खुल जाती है। दुनिया की हराम मोहब्बत इंसान छुपाना चाहता है वो खुल जाती है। तो दोस्तों जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कितना छुपाएगा। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया शराबी शराब पी करके इलायची इलायची चबा ले तो फरमाया मुंह की बदबू तो दूर कर लेगा लेकिन अपनी मस्त निगाहों को नहीं छुपा सकता। फरमाया अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेकर के दुनिया के सामने बैठ जाए तो फरमाया कि वो दुनिया के सामने जाहिर में बैठेंगे लेकिन अपनी मस्त निगाहों को नहीं छुपा सकते। अल्लाह ताला उनके चेहरे से जाहिर फरमा देता है कि अल्लाह के नेक वली है। हजरत शेख शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह जब आए, हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने चेहरा देख करके पहचान लिया और फरमाया हजरत मुझे बैठ कर लीजिए। हजरत शेख शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, फरमाया मेरे पास क्या लेने के लिए आ रहे हो। फरमाया हजरत कुछ भी हो बस अब मुझे बैठ कर लीजिए। और हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने क्या मकाम अदा फरमाया था, 500 उलमा उनके पीछे चलते थे, 500 उलमा। लेकिन हजरत शेख शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह पर जब एक नजर पड़ी अपना इल्म सारा भूल गए, अपना मन अपना मनसब अपना मकाम सब कुछ भूल गए। जो इंसान अल्लाह के लिए अपना सब कुछ भुलाकर अपने आप को किसी के हवाले करता है अल्लाह ताला दोस्तों उसको कभी जाया नहीं फरमाते, वो बन करके निकलता है। जब कोई चीज तोड़ी जाती है तो तोड़ करके कोई अजीब चीज बनानी होती है जब किसी चीज को तोड़ा जाता है। जब इंसान का दिल तोड़ा जाता है कि गुनाहों से बच, अपनी नजर की हिफाजत कर, अल्लाह वाले जब ये दर्ज देते हैं तो मालूम होता है कि इस घर को इसीलिए तोड़ा जा रहा है कि इस दुनिया के अंदर दुनिया की चीज नहीं बल्कि दुनिया के मालिक को आना है। वो इसलिए दिल को तोड़वाते हैं क्योंकि हदीस कुदसी में क्या है, अन इंद अल मुनकसिरा फी कुलूबहुम, मैं साबित दिलों के अंदर नहीं रहता, जो अकड़े हुए दिल है उनके अंदर नहीं रहता, मैं टूटे हुए दिलों के अंदर रहता हूँ। आज हम अपने लिए कौन सा मकान पसंद करते हैं? अगर एक इंसान झोपड़ी में रहता है उसको एक 400 गज का मकान दिखाया जाए, एक 1000 गज का दिखाया जाए और एक 4000 गज का मकान दिखाया जाए और उससे कहा जाए तू कौन सा मकान लेगा, तो वो क्या कहेगा? कहेगा सबसे आला लूंगा, जब देना ही है तो सबसे आला दो। अल्लाह ने फरमाया मुझे इस चीज की एहतियाज नहीं है, मैं तो टूटे हुए दिल के अंदर आऊंगा। तू अपना दिल तोड़ ले, हराम आरज़ुओं का खून कर ले, जब तेरा दिल टूट जाएगा तो उस दिल के अंदर मैं ही जलवा अफरोज होऊंगा। और जिसके दिल में अल्लाह ताला जलवा अफरोज हो जाए फिर सारी दुनिया के गम उसके करीब से भी नहीं गुजर सकते। परेशान करना तो दूर की बात है, करीब से भी नहीं गुजर सकते। किस लिए? कि हक ताला जल्ले शानो उसके कल्ब के अंदर है। तो दोस्तों अल्लाह वालों को देखकर इंसान पहचान जाता है। एक दफा उमरे के सफर में हरम काबा के अंदर तो दादा की व्हीलचेयर कोई खादिम चला रहा था, एक मिस्री शख्स आया, दाढ़ी नहीं थी उसकी और मैंने उसको देखा भी जिंदगी में पहली बार था। तो उसने दादा को देखते ही कहा, अरबी में कहा कि आपका चेहरा और हजरत अबू बकर सिद्दीक का चेहरा अलग नहीं है भाई। ये कहा, हाथ चूमा और चला गया। किसी पर अल्लाह ताला किसी वक्त मुनकशिफ कर देते हैं, वो पहचान जाता है कि अल्लाह का वली है। दोस्तों एक पुलिस वाले को जब इंसान वर्दी में देखकर पहचान लेता है तो एक अल्लाह का वली है उसको कोई नहीं पहचानेगा। हदीस पाक में क्या आता है कि अल्लाह के वली कौन है? जिनके चेहरे को देखकर अल्लाह की याद आ जाए समझ लो ये अल्लाह का वली है। तो ये नेमतें दोस्तों कयामत तक रहेंगी। जिस हालत के अंदर हो उसी हालत में अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दे दो। ये ना सोचो कि गुनाह छोड़कर हाथ दूंगा, नहीं, जिस हालत के अंदर हो किसी गुनाह में मुबतला हो किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत कर लो। बैत होना जरूरी नहीं है, ताल्लुक कायम करना जरूरी है। इस्लाह नफ्स फर्ज है, बैत होना फर्ज नहीं है, और इस्लाह के लिए बैत होना फर्ज नहीं है, ताल्लुक कायम कर लो। दादा ने फरमाया पीर बनाते हुए शर्म आती है, तू मुशीर बना लो भाई। प्लाट खरीदते हो क्या करते हो? कहते हैं वकील से मशवरा कर लो। प्लाट खरीद रहे हो वकील से मशवरा कर रहे हो? फरमाया कि दीन लेने के लिए जा रहे हो, किसी अल्लाह वाले को मुशीर बना लो कि हजरत मैं ये काम करना चाहता हूँ कर लूँ या नहीं। फरमाया पूछ पूछ करके करोगे? फरमाया एक दिन अल्लाह ताला तुम्हें भी कबूल फरमा लेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने औलिया की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने दोस्तों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें कामिलीन के अंदर अल्लाह ताला शामिल फरमाए। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई पिछले जुम्मे भी ये बात मैंने बयान की थी कि जो लोग बच्चों को लेकर के आते हैं वो बच्चों को अपने साथ बिठा करके रखें, जो खवातीन भी लेकर के आती हैं वो बच्चों को अपने साथ बिठा करके रखें। ये समझना कि मस्जिद अल्लाह का घर है ला करके छोड़ देना इसके अंदर तो ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है कोई। जिसके अंदर बैल भी आ रहा है इंसान भी आ रहे हैं, बच्चों को लेकर के आए तो उनको काबू भी रखें, उनको चुप भी कराए, ऐसा ना हो मस्जिद की बेहरमती हो। मस्जिद की हुर्मती मस्जिद के तकद्दस को पामाल न करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए।